समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस अंक में शेफाली के साथ मैं नवीन सक्सेना अगले आधे घंटे तक हम आपको दिन भर के लिए तैयार कर देंगे। आज का दिन बहुत खास है। दिन इसलिए खास है क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव जो है वो कल समाप्त हुआ है और आज जश्न का दिन है। मतदाताओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, मैं तो यही कहूंगा। बहुत से लोगों को जीत का स्वाद आज मिला और बहुत से लोगों को शायद इस बार पार्लियामेंट का, संसद का दरवाजा न देखने को मिले। मतदाताओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, प्रत्याशियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लोकतंत्र की जीत हुई है। और इसके अलावा आज है 5 जून। दिन बहुत खास है। क्यों खास है वो हम आप पे छोड़ते हैं। सिर्फ इस गीत को हम आपको सुनाते हैं तब समझिएगा कि क्यों है आज का दिन खास और क्यों अगले आधे घंटे तक आपको हमारे साथ रहना है।
हरी हरी वसुंधरा पे नील नील ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन।
कोशिश कीजिएगा, समझिएगा कि ये गीत आज हमने आपके लिए क्यों प्ले किया है। बहरहाल आज शेफाली मेरे साथ है। नमस्कार शेफाली।
नमस्कार नवीन, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड आकाशवाणी नेटवर्क। सो जैसा कि नवीन ने कहा कि आज हार जीत तो हुई ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्व रखता है वो है ये कि डेमोक्रेसी हैज बीन सेलिब्रेटेड। द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी has been celebrated, and more than that, it's not just that, we also celebrate today World Environment Day, it being the 5th of June. And Naveen, jaisa ki maine hamesha dekha hai ki hamara environment humse hamesha baat kar raha hota hai, the land speaks to us, bas hum hi kabhi sun nahi pate hain.
और शायद आज का दिन इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि हम धरती की आवाज को सुन सके, पर्यावरण की आवाज को सुन सके, आपके आजू बाजू जितने भी पेड़ पौधे हैं ना उनकी आवाज को सुन सके। और शेफाली, अगर आवाज को नहीं सुनेंगे ना तो फिर सूरज हमारी बिल्कुल नहीं सुनेगा, है ना। 50 टच कर चुका है, 52, 53, 54 हाफ सेंचुरी बना चुका है, क्रिकेट का गेम उसको मत खिलाइए, है ना।
जी, कहीं फॉरेस्ट फायर्स हैं, कहीं फ्लड्स हैं, ड्राई स्पेल्स हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू लिसन टू द वॉइस, वी हैव टू बी पेशेंट, एंड देन वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। थोड़ा साइकिल से चल लीजिए और पौधे लगा लीजिए, तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं है।
बहरहाल नजर डाल लेते हैं कि खास खबरों पर कि क्या कुछ हो रहा है देश विदेश में। सबसे पहले लोकसभा परिणाम पे एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने लोकसभा चुनावों में 292 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। सभी 543 सीटों के परिणाम आ गए हैं। भाजपा ने 240 सीटों पर जीत हासिल की है। आईएनडीआईए गठबंधन के खाते में 233 सीटें आई हैं। अन्य दलों को 18 सीटें मिली हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनाव जीतने पर बधाई दी है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने की संभावना है।
Prominent candidates who have won include Prime Minister and BJP leader Narendra Modi from Varanasi, Union Ministers Amit Shah from Gandhinagar, Om Birla from Kota, Arjun Ram Meghwal from Bikaner, Gajendra Singh Shekhawat from Jodhpur, Jyotiraditya M. Sindhya from Guna, Samajwadi Party leader Dimple Yadav from Mainpuri seat, and Shatrughan Sinha of TMC from Asansol. Prominent candidates who have lost include BJP leader and Union Minister Arjun Munda from Khunti, Smriti Irani from Amethi, National Conference leader Omar Abdullah from Baramulla, and PDP leader Mehbooba Mufti from Anantnag seat. In Uttar Pradesh, result of all the 80 constituencies has been declared. Samajwadi Party has won 37, while the BJP has won 33 seats. Congress 6 and Rashtriya Lok Dal won 2 seats. Apna Dal, Sonelal, ADAL and Azad Samaj Party, Kanshiram, ASPKR have won 1 seat each. No BSP candidate managed to win the election in the state. Prime Minister Narendra Modi has won from Varanasi, defeating Ajay Rai of Congress by a margin of more than 1,50,000 votes. Rajnath Singh of BJP won his Lucknow seat by over 1,35,000 votes. Congress leader Rahul Gandhi has been declared elected from Rai Bareli seat, defeating BJP rival Dinesh Pratap Singh by a margin of over 3,90,000 votes. Akhilesh Yadav of Samajwadi Party has won by more than 1,70,000 votes in Kannauj. Other prominent winners of BJP include Dr. Mahesh Sharma from Gautam Buddh Nagar, Jitin Prasad from Pilibhit, Swami Satchidanand Hari Sakshi from Unnao, Arun Govil from Meerut, Hema Malini from Mathura and Ravi Kishan from Gorakhpur. In Bihar, election results of all 40 Lok Sabha constituencies have been declared. The BJP and the Janata Dal United have won 12 seats each. Dr. Sanjay Jaiswal, Radha Mohan Singh, Giriraj Singh and Ravi Shankar Prasad are among winning BJP leaders, while Congress candidates Manoj Kumar, Tariq Anwar and Mohammad Javed have won their elections.
मेघालय की दो लोकसभा सीटों के नतीजे भी घोषित हो गए हैं. वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी उम्मीदवार रिकी एंड्रयू जे सिंघकोन ने शिलांग की सीट, जबकि कांग्रेस के सालिंग संगमा ने तोरा सीट पर विजय हासिल की है.
इन दिल्ली बीजेपी हैव वन ऑन ऑल सेवन सीट्स. बासुरी स्वराज वन फ्रॉम न्यू दिल्ली सीट, बीटिंग सोमनाथ भारती ऑफ एएपी. प्रवीण खंडेलवाल सिक्योर चांदनी चौक सीट, डिफीटिंग कांग्रेस लीडर जयप्रकाश अग्रवाल. In Punjab, out of all 13 seats, Congress has won 7, Aam Aadmi Party 3, Shiromani Akali Dal 1 and Independent 2 seats. In Haryana, BJP and Congress have won 5 seats each. In Lower Lok Sabha seat in Chandigarh, Congress candidate Manish Tiwari has won against BJP candidate Sanjay Tandon. Out of 5 seats in Jammu and Kashmir, BJP and the National Conference have won 2 seats each, while Independent candidate has won 1 seat. In lone parliamentary seat in Ladakh, independent candidate Haji Hanifa has won. In Himachal Pradesh, the BJP has won all 4 Lok Sabha seats with this clean sweep. The BJP has repeated the history of 2014 and 2019. Prominent leaders among the winners this time include Union Minister Anurag Singh Thakur and actress Kangana Ranaut. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi has said it is certain that the NDA will form the government at centre for the third consecutive term. Addressing party workers at BJP headquarters, Mr. Modi said people have shown full faith in the BJP and NDA in this poll. Mr. Modi added that it is a victory of faith in the Indian constitution and the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas. He also lauded the Election Commission and others involved in the successful conduct of the Lok Sabha polls 2024. Global leaders have extended their congratulations to Prime Minister Narendra Modi and his party for securing a third consecutive victory in the Lok Sabha elections. Leaders from Italy, Mauritius, Bhutan, Nepal, Maldives and Sri Lanka congratulated the Prime Minister on his win.
Lok Sabha ke natijon ke baad ab nazar daal lete hain khelon ki duniya mein kya kuch hua aur unke natije kaise rahe. तो बात T20 क्रिकेट विश्व कप की. 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम आज अपना अभियान शुरू करेगी. न्यूयॉर्क में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा. मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. कल खेले गए मैच में नीदरलैंड ने नेपाल को 6 विकेट से हरा दिया था, और इससे पहले ब्रिज टाउन में कैंसिंगटन ओवल में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मैच जो था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था. तो आज नजर रखिएगा भारत के अभियान पर. भारत आज शुरुआत कर रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि आज का मैच बहुत आसानी से जीत जाएगा और ये अभियान आखिर तक रहेगा, और उम्मीद यही है कि इस बार का विश्व कप हम ही उठाएंगे. आज सवेरे में वक्त हो चला है 4 प्रमुख नगरों से जुड़ी खबरों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करने के लिए. सबसे पहले चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद, ये 3 शहर शेफाली कवर करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में क्या कुछ हो रहा है. शेफाली.
यस नवीन, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई. द यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी असेंडियन हैज डिसाइडेड टू रैंप अप इट्स वर्कफोर्स एंड ट्रेन देयर एम्प्लॉइज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, betting big on AI adoption and cost rationalization. The company has opened a Gen AI studio in the city to showcase tools and applications to the clients. The company's chief executive officer, Karthik Krishnamurthy, said that the company is winning new AI deals and aims to generate at least 50% of their revenue from the technology. And in another news from Chennai, the regional Met department has forecast light to moderate rainfall over some areas for the next 48 hours. The city witnessed light showers on Tuesday evening and cooled the hot climate. The weather department said that the temperatures would reduce due to rains for the next 2 days. And now in Bengaluru, a ceremonial attestation parade with full military fanfare was held at the Maratha Light Infantry Regimental Center in Belagavi yesterday. In the ceremony, 560 Agniveers were attested after their successful completion of 31 weeks of training. The attestation parade of the Agniveers was reviewed by Brigadier Joydeep Mukherjee, Commandant, the Maratha Light Infantry Regimental Center. He applauded the Agniveers on their immaculate turnout and very high standard of drill. The parade was commanded by Agniveer Mukesh Jamar, while Major Abhishek Kashyap was the parade adjutant. The Agniveers took the oath of affirmation before the national flag, the regimental flag and religious holy books. It was an impressive ceremony attended by serving and retired fraternity of the regiment and the proud parents of the Agniveers who were attested. Addressing the newly attested Agniveers, the reviewing officer reminded them of the rich heritage and the glory of the Maratha Light Infantry as one of the oldest infantry regiments of the Indian Army. He also stressed upon the importance of discipline and physical fitness in a soldier's life. He exuded confidence in the training conducted at the regimental center and assured that it would stand the young soldiers in good stead before wishing them the very best in their future assignments. And news from Hyderabad. In Telangana, the BJP doubled its tally from 4 to 8, the highest ever tally for the party in the state, while the Congress received both joy and disappointment. The Congress had to see losing some of its strongholds despite improving from 3 in 2019 to 8 seats at present in the state. BJP could bag 4 more constituencies besides all existing 4 seats. Meanwhile, winners in 11 out of the 17 Lok Sabha seats in Telangana have seen huge majorities of over 1 lakh votes, with the voters overwhelmingly choosing the winner with no scope for any ambiguity. Among these 11 seats with over 1 lakh margins, the top two are from the Congress, including Nalgonda and Khammam. In Nalgonda, K. Raghuveer Reddy emerged as the winner with the highest margin in the entire state, as he won by over 5.59 lakh votes margin. Ramashayam Raghuram Reddy won Khammam with a margin of over 4.67 lakh votes. E. Rajender of BJP won Malkajgiri by over 3.91 lakh votes majority, while BJP General Secretary B. Sanjay Kumar won by a majority of 2.25 lakh votes. BJP sitting MP Arvind Kumar re-elected by over 1.09 lakh votes majority. BJP Vice President D.K. Aruna won Mehboob Nagar by 4,500 votes majority, which is the lowest majority in the state. MIM President Asaduddin Owaisi won Hyderabad by over 3.38 lakh votes, which is more than that of 2019. The final tally from Telangana is Congress and BJP won 8 seats each, while the MAIM won 1 seat, Hyderabad. And now for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, we move over to you, Naveen.
नजर सबसे पहले दिल्ली की खबरों पर. दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटें जीत ली हैं. चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल विजय रहे, जबकि दक्षिणी दिल्ली सीट पर रामवीर सिंह विधूड़ी ने जीत हासिल की. मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर विजय रहे, जबकि बांसी स्वराज ने नई दिल्ली सीट पर जीत दर्ज की. हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली सीट और कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली सीट पर कामयाबी हासिल हुई. वहीं योगेंद्र चंदोलिया ने उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट पर भाजपा की जीत का परचम लहराया. नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन आम लोगों के लिए आज से 9 जून तक बंद रहेगा. राष्ट्रपति भवन से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के आगामी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर आम लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन बंद रहेगा. रुख करते हैं मुंबई का. यात्रियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम रेलवे यांत्रिक सिग्नलिंग, विद्युत परिसंपत्तियों और उपकरणों आदि के उचित रखरखाव के साथ साथ कई प्री मॉनसून कार्यों को मिशन मोड पर कर रखी है. पश्चिम रेलवे विभिन्न बाढ़ संभावित स्थानों पर 100 उच्च क्षमता वाले पानी के पंप लगाने पर विचार कर रखी है. वहीं पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने कहा कि रेलवे पटरियों की स्थिति पर नजर रखने के लिए मॉनसून गश्त की जाएगी और यात्रियों के लिए व्यवधान मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन सेल के साथ समन्वय बनाए रखा जाएगा। अगली खबर, प्रवीण निट्टारू हत्याकांड में फरार आरोपी रियाज यूसुफ हराली को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे मुंबई एयरपोर्ट से उस समय गिरफ्तार किया जब वो विदेश भागने की फिराक में था। और अब बात कोलकाता की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीत ली हैं और बीजेपी को 12 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। कांग्रेस को एक सीट मिली है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार भी लेफ्ट बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। तो ये खबरें थी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। और अब बात आपके शहर के मौसम की। जानते हैं आप अक्सर मौसम का हाल अपने गूगल पर चेक कर लेते हैं, लेकिन हम यहां पे सिर्फ आपको ये बताने के लिए बैठे रहते हैं कि क्या आज आप कितनी गर्मी झेल पाएंगे, क्या आप बरसात झेल पाएंगे या फिर आप यूं ही बिना किसी व्यवधान के दिन भर घूमते रहेंगे। बहरहाल दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली में आज तापमान थोड़ा कम रहेगा। कम इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपने कल 43, 44, 45 तक भी झेला हो, लेकिन आज टेम्परेचर 41 यानी 41 डिग्री के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 35 डिग्री और 29 डिग्री के बीच वैरी करेगा। बात करें कोलकाता की तो आमतौर पर वहां बादल छाए रहेंगे, मध्यम बारिश होने की संभावना है, तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहेगा। देश के बाकी हिस्सों का हाल शेफाली
जी। द साउथ क्लियरली सीम्स टू बी गेयर टुवर्ड्स बेटर वेदर कंडीशंस। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विथ रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विथ वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन्स और थंडर शावर्स। The minimum temperature is 21 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius.
हर दिन अपने आप में खास होता है, किसी अहम घटना से जुड़ा हुआ आता है। 5 जून एक ऐसी तारीख जिस दिन कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। जून का पहला सप्ताह और उसमें भी 5 जून खास इसलिए क्योंकि आज है विश्व पर्यावरण दिवस। और क्यों मनाया गया, उद्देश्य क्या था, इस बार का थीम क्या है, स्लोगन क्या है, बहुत सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात 1972 की संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन को चिन्हित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य था पर्यावरण की रक्षा और सतत पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जागरूकता की कार्रवाई को प्रेरित करना। शेफाली
जी, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1972 बाय द यूनाइटेड नेशंस एट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट दैट हैड रिजल्टेड फ्रॉम डिस्कशंस ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस एंड द एनवायरमेंट। One year later, in 1973, the first World Environment Day was held with the theme Only One Earth.
प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस एक विशिष्ट पर्यावरणीय थीम पर फोकस होता है, सेंट्रल थीम के आसपास घूमता है। वर्ष 2024 यानी इस साल का जो थीम है, इस साल का जो विषय है, वो है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता यानी लैंड रिस्टोरेशन, डी सर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ये इस बार का थीम है।
Also first held in 1973, it has been a platform for raising awareness on environmental issues as marine pollution, overpopulation, global warming, sustainable development and wildlife crime.
हर साल पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर एक प्रभावशाली स्लोगन को भी शामिल किया जाता है। और हम अपने सुनने वालों को बता दें जो इस बार का स्लोगन है वो है हमारी धरती हमारा भविष्य हम पुनर्स्थापना की पीढ़ी है। और हर साल एक विशिष्ट देश जो होता है वो प्रमुख कार्यक्रमों की मेजबानी करता है और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस पर जो मेजबान देश है वो है सऊदी अरब। और शेफाली अक्सर हम क्या करते हैं कि जब भी कोई खास बात होती है, कोई खास थीम होता है, कोई खास दिन होता है तो उसको हम एक गीत से सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत सुंदर सा गीत आपने एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम भी सुना होगा, एक बार फिर प्ले करते हैं ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
हरी हरी वसुंधरा पे नील नील ये गगन कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है।
Also, I would like to inform our listeners that World Environment Day is supported by many non-governmental organizations, businesses, government entities, and represents the primary United Nations Outreach Day supporting the environment.
विश्व पर्यावरण दिवस का अर्थ केवल ये नहीं है कि आपको सिर्फ पेड़ पौधे ही लगाने, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, और ये करेंगे ना तो आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेगी, हमें याद करेंगी कि हमने उनके लिए बहुत कुछ ऐसा बचा के रखा है जो उनके जीवन को जीने के लिए जरूरी है।
जी बिल्कुल, बिकॉज द वर्ल्ड डज नॉट ओनली बिलोंग टू अस, इट बिलोंग्स टू आवर फ्यूचर जनरेशंस। हम तो मुसाफिर हैं, कुछ वक्त के लिए यहाँ आए हैं, समय बिता के चले जाएंगे, पर हमें पिछले का भी सोचना है, अगले का भी सोचना है, तो लेट्स बी अ लिटिल कॉन्शियस इन आवर एफर्ट्स एंड स्टेप्स।
ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, बगीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है।
और अब नजर डाल लेते हैं कुछ और घटनाओं पर जो जुड़ी हुई हैं आज के दिन से। बात 1944 की, आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान की नाजी टिकड़ी वाले देशों की राजधानियों में से मित्र सेनाओं के कब्जे में आने वाला रोम पहला शहर बना था।
On 5 June 1659, दारा शुको सेलिब्रेटेड हिज कॉरोनेशन एट देवराय आफ्टर द फाइनल डिफीट।
1953 वो आज का दिन था जब डेनमार्क में नया संविधान लागू हुआ था, और 1968 में अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में एक होटल में मशहूर अमरीकी सांसद रॉबर्ट कैनेडी पर जानलेवा हमला हुआ था।
ऑन दिस डे इन 1974 देयर वाज अ स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक इन द कंट्री। इन 1980 मणिपुर यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड।
1990 आज ही का दिन सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गॉर्बाचोव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2017 में वो आज ही का दिन था जब सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3D1 का सफल परीक्षण किया गया था।
In 1989, missile Trishul was tested successfully. In 1994, Shakti Singh at Bangalore set record for DT in 61.72. In 1995, a three-week-long, the first-ever Indo-US joint army training exercise began. In 1997, Brahmapuram Diesel Power Project, KSEB's first thermal power project, situated 25 kilometers from Kochi, Kerala, was commissioned.
तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से, और अब याद करते हैं उन विशिष्ट व्यक्तियों को, उन महान व्यक्तियों को जो कहीं ना कहीं आज के दिन से जुड़े हुए हैं, और हम उन्हें याद करेंगे। तो सबसे पहले बात मास्टर मदन की, चाइल्ड प्रोडिजी, भारत की आजादी से पहले एक प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक थे। मास्टर मदन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि उनका जो कार्यकाल था, उनके जो गीत संगीत के जो दिन थे वो बहुत कम थे। मात्र 15 साल की उम्र में सन 1940 में उनकी आज ही के दिन मृत्यु हो गई थी। मास्टर मदन एक ऐसे कलाकार थे जो 1930 के दशक में किशोर के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी, और ऐसा माना जाता है कि मास्टर मदन को आकाशवाणी और अनेक रियासतों के दरबार में गाने के लिए बहुत ऊंची रकम दी जाती थी। कभी आप आकाशवाणी दिल्ली में आए, इसको घूमने आए, तो आप देखिएगा कि हमारे यहां पे एक पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है, एक स्टूडियो जो है, वो मास्टर मदन को डेडिकेटेड है। मास्टर मदन उस समय के प्रसिद्ध गायक कुंदन लाल सहगल के बहुत करीब थे। 28 दिसंबर 1927 को जालंधर जिले में उनका जन्म हुआ था। सार्वजनिक रूप से केवल दो ही गानों की रिकॉर्डिंग सब जगह मिल पाती है, एक गीत है हैरत से तक रहा हूं, और दूसरा है यूं ना रह रहकर हमें तरसाइए। हम भी आपके लिए वो गीत लेकर आए हैं मास्टर मदन की आवाज में, सुनते हैं, बहुत खूबसूरत गीत है। स्वर है मास्टर मदन का, एक युवा प्रतिभाशाली एक छोटा सा बच्चा। मास्टर मदन ने राजाओं के दरबार में गायन शुरू किया था। 8 साल की उम्र में ही उन्हें संगीत सम्राट कहा जाता था। मास्टर मदन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से धर्मपुर के एक अस्पताल द्वारा एक आयोजित रैली में गाया गया था। विलक्षण बुद्धि के बालक थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आज के दिन 1942 में याद कर रहे हैं उन्हें उनकी इस खूबसूरत गायकी से।
We have another musician here, as today is the birth anniversary of Govind Sadashiv Tembe, popularly known as Govind Rao Tembe, a harmonium player, stage actor and music composer. Govind Rao Tembe composed several Marathi Lakshan Geet, which are called songs of expression, that are innovative ways of indicating the guidelines or rules of a particular raga in lyrics, but also allow the listening experience of that raga at the same time. He composed music for the first Marathi talkie, Ayodhyacha Raja. He also acted in that production. He started his own company named Shivraj Natak Mandali. He wrote dramas and also the Padas songs in them. So let's listen to one of his compositions on the harmonium. Go.
आज ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शंकर कुरूप की भी पुण्यतिथि है। उन्हें कोचीन राज्य के पंडित परीक्षा पास करके अध्यापन की योग्यता प्राप्त की और महाकवि गोविंद शंकर कुरूप की 40 से अधिक मौलिक और अनुदित कृतियां जो है वो प्रकाशित हो चुकी हैं। बात जन्मदिन की, आज रमेश कृष्णन का जन्मदिन है। भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी रहे हैं और 1970 के दशक के अंत में उन्होंने विंबलडन और फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता था और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है।
Today is also the birth anniversary of Satish Chandra Mukherjee. He was a pioneer in establishing a system of national education in India along with Sri Aurobindo. Satish Chandra received inspiration from Ishwar Chandra Vidyasagar, the famous educationist. Alive to the necessity and the usefulness of all other systems, secular or religious, Eastern or Western, Satish Chandra's intense religious temperament laid emphasis on the study of Hindu life, thought and faith.
आज पुण्यतिथि है आचार्य कुबेरनाथ रॉय की। भारतीय कवि थे, आज के दिन 1996 में उनका निधन हुआ था। और अब बात करते हैं उस निर्माता की, फिल्म निर्माता की, बॉलीवुड फिल्म निर्माता की, जिन्होंने बेहतरीन फिल्में दी हैं और उनकी फिल्मों के गीत बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। फिल्म का नाम लें तो आशिकी, राज, सड़क, जन्न, दिल है के बांधता नहीं। हम बात कर रहे हैं मुकेश भट्ट की, वो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। फिल्म डैडी से उन्होंने शुरुआत की थी। बहुत से खूबसूरत गीत हमने उनकी फिल्मों से चुने हैं, आइए सुनते हैं।
Bhatt's first film as a producer was Jurm in 1990 with Vinod Khanna. The film was very successful. Then he collaborated with Gulshan Kumar to produce the famous love story Aashiqui, starring debutants Rahul Roy and Anu Agarwal.
आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का संस्करण आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। मैं और शेफाली बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं, तो अच्छा सोचेगा अच्छा बनेंगे। और हाँ, हमारी इस टीम में थी एडिटर संयुक्ता और हमारे साथ जो प्रोडक्शन असिस्टेंट थे वो थे वे। तो इस पूरी टीम की इस कामयाबी को हम उम्मीद करते हैं आप जरूर शेयर करेंगे।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज अवर प्रोग्राम समाचार प्रभात। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।